अगले दिन सुबह से ही मौसम खराब था। आकाश में काले बादल छाए थे, सर्द हवाएं चल रही थीं और रुक रुक कर हल्की बूंदाबांदी भी हो रही थी। हेल्पर की मदद से अहाना ने नाश्ता और लंच तैयार किया। जब अक्षय के साथ स्कूल के लिए निकली तो दबे छुपे शब्दों में रूपाली जी ने तंज कस दिया। पैसे मायके देती है और इस्तेमाल यहाँ की चीज़ें करती है, ये ताना अक्षय की गाड़ी में बैठने के लिए उसे मिला था, जिसे समझ कर भी वो शांत रही। छुट्टी के वक्त से कुछ देर पहले से ही बाहर झमाझम बारिश होने लगी थी, जिससे सड़कों पर पानी भरने लगा था। आकाश पर काली घटाएं छाई थीं और दोपहर के 3 बजे शाम के 6-7 बजे जैसा मौसम बन गया था। बारिश जोरों पर थी और उसके रुकने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे थे। बच्चे स्कूल से घर जा चुके थे, टीचिंग स्टाफ भी जाने लगा था। अहाना ने अन्वय को कॉल किया तो पता चला कि उसकी बाइक बंद पड़ गई है और वो रास्ते में फंसा हुआ था। अक्षय को कॉल किया पर उसने कॉल रिसीव नहीं किया। बारिश के कारण वहां कोई ऑटो या रिक्शा वाला भी नजर नहीं आ रहा था और 2-3 बार कैब भी कैंसिल हो चुकी थी। कल के कारण मूड पहले ही ठीक नहीं था और लगातार होती इस मूसलाधार बारिश ने उसकी परेशानियों को और बढ़ा दिया था। स्कूल के एंट्रेंस पर बने गार्ड रूम की दहलीज पर खड़ी अहाना अब भी परेशान सी कैब बुक कर रही थी, जब एक कार उसके सामने आकर रुकी। पर अहाना का पूरा ध्यान अब भी अपने फोन पर ही था। अहाना मैम, आप यहां बारिश में क्यों खड़ी हैं? एक जानी पहचानी सी आवाज़ अहाना के कानों से टकराई और नज़रें सामने की ओर उठ गईं। कार का शीशा नीचे सरकाए अंदर से एक 40-45 साल का आदमी उसे सवालिया निगाहों से देख रहा था। अहाना के सीनियर थे वो, दिखने में अच्छे खासे थे और शरीर भी अच्छा बनाया हुआ था, जिससे उनकी उम्र का अंदाज़ा लगा पाना ज़रा मुश्किल था। स्वभाव में भी काफ़ी अच्छे थे और अहाना से ठीक ठाक बात भी होती थी। आखिर सेम क्लासेस को पढ़ाते थे और अहाना को उनसे काफ़ी मदद मिल जाती थी। उन्हें सामने देखते ही अहाना ने अपने चेहरे के बिगड़े भावों को सामान्य किया। सर, कैब का इंतज़ार कर रही हूँ। कैब का इंतज़ार कर रही हैं? आज आपके पति या देवर नहीं आ रहे आपको लेने? दोनों का निकलना ज़्यादातर साथ ही होता था, इसलिए वो अन्वय और अक्षय दोनों को ही जानते थे। अहाना के माथे पर अब चिंता की लकीरें उभर आई थीं। अगर दोनों में से कोई आ जाता तो चिंता ही क्या थी। जी, वो देवर आ तो रहे थे पर उनकी बाइक खराब हो गई है और वो बारिश में फंस गए हैं, इसीलिए कैब बुक की है। अहाना का जवाब सुनकर सर कुछ परेशान हो गए। इस बारिश में कैब का आना तो मुश्किल है। आप एक काम कीजिए, अंदर बैठ जाइए, मैं आपको घर ड्रॉप कर देता हूँ। हेल्पिंग नेचर के सर ने उसे राइड ऑफर कर दी। अहाना ये तो जानती थी कि बारिश के कारण कैब का आना भी मुश्किल ही था, पर उनके साथ जाने में भी झिझक रही थी। आप क्यों परेशान होंगे सर, हम चले जाएंगे। परेशानी की कोई बात नहीं, आपकी दो सहेलियों को छोड़ने जा ही रहा हूँ, आपको भी छोड़ दूंगा, इसीलिए बेझिझक आकर बैठ जाइए। ये बरसात अभी रुकने वाली नहीं है और जब तक बारिश नहीं थमती, रास्ता साफ नहीं होता, कोई कैब या ऑटो नहीं आएगी। कब तक यहाँ खड़े इंतजार करती रहेंगी? बात उनकी 100% सही थी। सर की बात खत्म हुई कि पीछे की सीट पर अहाना के साथ बैठी टीचरों ने भी उसे बैठने को कह दिया और हालातों के आगे मजबूर होकर अहाना भी पीछे ही बैठ गई। उसका घर सबसे दूर था, दोनों टीचर्स पहले ही उतर चुकी थीं और बारिश भी पूरे जोर पर थी। कार सैगल निवास के बाहर रुकी और सर को थैंक यू कहकर अहाना जैसे ही कार से बाहर निकली, उसकी नज़र सामने से आती रूपाली जी पर चली गई। शायद पड़ोस के घर से निकली थी वो और तीखी नज़रों से उसे ही घूर रही थी। घर के बाहर ताला लगा था। रूपाली जी ने तिरछी निगाहों से वहां से जाती कार को देखा और गेट खोलकर अंदर चली आई। अहाना जो कुछ भीग गई थी वो भी उनके साथ ही चली आई। कौन था वो आदमी जिसकी गाड़ी में तुम आई थी? अहाना सीढ़ियों की ओर बढ़ ही रही थी कि रूपाली जी की गुस्से भरी कठोर आवाज़ उसके कानों से टकराई। अहाना के आगे बढ़ते कदम ठिठक गए, चेहरे के भाव कुछ बदले और वो उनकी ओर पलट गईं। हमारे स्कूल में पढ़ाते हैं, हमसे सीनियर हैं, अहाना ने शांत स्वर में जवाब दिया और अगले ही पल रूपाली जी उस पर भड़क उठी। स्कूल में साथ पढ़ाते हैं तो क्या उसे घर ले आओगी? बेशर्मो जैसे गैर मर्द की गाड़ी में बैठ जाओगी? जरा भी अपनी या हमारे परिवार की इज्जत मान सम्मान की चिंता है तुम्हें या नहीं? लोग तुम्हें पराए मर्द के साथ देखेंगे तो कैसी कैसी बातें बनाएंगी, कुछ इसका भी अंदाजा है? रूपाली जी की तीखी और कड़वाहट भरी बातें सुनकर अहाना के चेहरे के भाव बिगड़ने लगे थे। उसके बावजूद उसने उनकी उम्र और रिश्ते का लिहाज करते हुए संयमित स्वर में जवाब दिया। शौक से उनकी गाड़ी में बैठकर घूमने नहीं निकली थी, बारिश बहुत तेज थी और घर लौटने का कोई साधन नहीं था। वो दो और टीचरों को छोड़ रहे थे तो हमें भी छोड़ दिया। झूठ मत बोलो, बारिश का बहाना बना रही हो, हमने तो गाड़ी में किसी लड़की को नहीं देखा। तुम अकेली उस गैर मर्द के साथ उसकी गाड़ी में आई थी और यहाँ हमें झूठी कहानी सुनाकर बेवकूफ बना रही हो। रूपाली ने गुस्से से उस पर गरज उठी और उसकी सारी सच्चाई को झुठला दिया। अहाना ने गहरी सांस छोड़ी और सपाट लहजे में बोली, हमारा घर सबसे आखिर में था, इसीलिए कार में हम अकेले थे। इससे ज्यादा हम अब आपको अपनी सफाई में कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि आपको हम पर भरोसा तो वैसे भी नहीं करना है, तो आपको जो सोचना है सोचिए, आप पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। हम अब अपनी सच्चाई साबित करने के लिए कोई सफाई नहीं देंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि हम सही हैं और इतना काफी है हमारे लिए। लहजा भले ही शांत था पर शब्दों में कठोरता थी, जो शायद रूपाली जी के उसके चरित्र पर सवाल उठाने के कारण आई थी। आहाना ने अपनी बात कही और पलटकर सीढ़ियां चढ़ने लगी। पीछे खड़ी रूपाली जी उसके तेवर देखकर सर से लेकर पैर तक सुलग उठी और जलते अंगारों से धधकती आंखों से उसे घूरने लगी। इसके बाद आहाना तो अपने रोज के कामों में लग गई थी, पर रूपाली जी सारा वक्त उसे सुनाती रही, जिसे वो एक कान से सुनकर दूसरे से निकालती गई। अब तो आदत हो गई थी उसे उनके तानों की और उन्हें नजरअंदाज करना भी सीख गई थी। दिन भर का थका हारा अक्षय रात 8 बजे घर लौटा। अन्वय और अभिजीत जी अभी लौटे नहीं थे। रात का खाना बनाकर आहाना कमरे में जा चुकी थी, शायद उनकी जहर भरी बातों से बचने के लिए गई थी। अक्षय ने घर में पहला कदम नहीं रखा कि रूपाली जी ने उसके मन में जहर भरने का काम शुरू कर दिया। उसके आते ही बोलना शुरू हो गई, हम तुम्हें आज साफ साफ बता रहे हैं कि अपनी बीवी पर जरा लगाम लगाओ, हाथ से निकलती जा रही है वो। आज किसी गैर मर्द के साथ घर आई थी, आस पड़ोस वाले गली मोहल्ले वाले सब आकर पूछ रहे थे कि आजकल आपकी बहू किन मर्दों के संग घूमती फिरती है। आज पराए मर्द के साथ घर तक आई है, कल को उसे घर लेकर आने लगेगी, कितनों को और किन किन सवालों के जवाब देंगे। तुम्हारी बीवी को तो इन सबसे कोई फर्क पड़ता नहीं और तुम अपनी आंखों पर पट्टी बांध कर बैठे हो, इसीलिए तुम्हें भी कुछ नजर नहीं आता। पर इसकी इन हरकतों के कारण हमें लोगों के सामने शर्मिंदा होना पड़ता है। वो हमसे सवाल करते हैं और हमारे परिवार की इज्जत और मान सम्मान पर प्रश्न उठता है, और ये सब हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। तुम्हारी बीवी तो हमारी सुनती नहीं है, कुछ बोलो तो उल्टा हमें 4 बातें सुनाती है और तुम्हारे सामने सती सावित्री होने का नाटक करके हमें ही अपने बेटे की नजरों में गुनहगार बना देती है। इसीलिए हमने सोच लिया है कि अब हम कुछ नहीं कहेंगे उसे। तुम्हारी बीवी है तो तुम ही जाकर उसे अच्छे से समझा दो कि हम उसकी ये हरकतें बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर इस घर में रहना है तो मर्यादा में रहना होगा, और अगर यही सब करना है तो कोई जरूरत नहीं उसे बाहर जाकर काम करने की। घर में रहकर घर संभाले, जैसे हमने संभाला था।
रूपाली जी ने एक के बाद एक लगातार झूठ के पुलिंदे बांधकर अक्षय को आहाना के खिलाफ भड़काने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। उन्होंने अपने शब्दों से आहाना को गुनहगार साबित कर दिया था, और जैसे बढ़ा चढ़ाकर बातें कही थीं, कोई भी उनकी बातों में उलझ जाता। एक तो बेचारा पहले ही थककर घर आया था, और आते ही उसे इतना सब सुनने को मिल गया कि उसका माथा ठनक गया। चेहरे पर सख्त भाव उभरे थे, और जैसे ही उसके कदम सीढ़ियों की ओर बढ़े, रूपाली जी के लबों पर शैतानी मुस्कान बिखर गई। आखिर जो वो करना चाहती थी उसमें कामयाब रही थी। अक्षय को आहाना के खिलाफ भड़का चुकी थी, चिंगारी वो लगा चुकी थी, और अब उनको बड़ी ही बेसब्री से उस धमाके का इंतजार था जो आहाना को इस घर में उसकी औकात दिखाने वाला था।